ओम शांति। आज के नुमा शाम के समय में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाल्यकाल से ही आपके घर में आपको अलौकिक वातावरण मिला, अर्थात बाल्यकाल से ही लौकिक और अलौकिक दोनों रीति से पालना हुई, पढ़ाई हुई, बड़े हुए और 71 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और दूसरी बार 1972 में, और जब दूसरी बार 72 में आए तो जीवन ही बाबा को समर्पित किया और फिर सेवाओं में लग गए। 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष जिम्मेवारी दी, कौन सी गेस कर सकते हैं? मुरली की, कि जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना। उस सेवा को आप आज दिन तक बखूबी निभा रहे हैं और समय के साथ साथ आपके कंधों पर सेवा की जिम्मेवारियां बढ़ती गई। वर्तमान में तो आप ग्रामीण विकास प्रभाग के भी वाइस चेयरपर्सन हैं। दादियों के पास जो लेटर्स आते हैं वो भी आप देखते हैं, पत्र पुष्प कंपोज करते हैं, फोटोकॉपी स्टेशनरी आदि का डिपार्टमेंट संभालते हैं। इतना ही नहीं, सारा ही समय जो आपकी उंगलियां मुरलियां टाइप करने के लिए कीबोर्ड पर नित्य करती रही तो अवश्य ही वो मुरलियां दिलो दिमाग पर भी छप गई, तो उसके आधार से, मुरलियों के आधार से टॉक शो अमूल्य रतन भी आपने किया, जिसमें हजार से भी ज्यादा एपिसोड पूरे किए हैं, 1200 एपिसोड पूरे किए कह रहे भ्राता जी। और चूंकि इतना सारा ज्ञान बाबा का बुद्धि में भरा हुआ है, न सिर्फ बुद्धि में भरा है लेकिन बाबा ने दिव्य बुद्धि के वरदान से भी आपको श्रृंगारा है, तो उसके बल पर पूरे भारत भर में आप भट्टियां कराने भ्रमण करते रहते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं जो आपके भट्टी में पधारे हैं और बहुत सुंदर विषय हैं जो संडे की मुरली में बाबा ने वरदान दिया था, चैतन्य दर्शनीय मूरत भव। तो आज उसी का स्वयं हमारे सामने एक चैतन्य दर्शनीय मूरत के सामने विराजमान भी है और हम भी कैसे चैतन्य दर्शनीय मूरत बनके बाबा की सेवा करें उसका मार्गदर्शन हम आपसे प्राप्त करेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। बाबा ने अपने सभी बच्चों को संगम युग पर दर्शनीय मुहूर्त बना दिया। आपके दर्शन से सब प्रसन्न हो जाएं, ऐसा है, बने हो ऐसा सभी। वैसे तो देवी देवताओं के मंदिरों में जड़ प्रतिमाओं के सामने भक्त आत्माएं कितनी लंबी लाइन लगाती हैं दर्शन करने के लिए। ऐसी दर्शनीय मूरत जिनके पल क्षण के दर्शन के लिए कितनी मेहनत करती है, कहाँ कहाँ तीर्थों पर मंदिरों में जा जा करके केवल एक दो मिनट क्या पल भर के दर्शन हो जाए उसमें प्रसन्न हो जाते, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। तो चैतन्य में जब आप उस स्वरूप में स्थित होंगे तो उस समय की स्थिति क्या होगी। ऐसे लगता है कि हमारे ही यादगार हैं और किसी के बने हैं। माताएं क्या समझती हो, आपके ही है ना। ऐसे संगम युग पर जब हम चैतन्य दर्शनीय मूर्त बहुत शुद्ध पवित्र आत्माएं बनी हैं, इतने श्रेष्ठ कर्म किए हैं, हर आत्मा को दुआएं दी हैं, दुआएं ली हैं, तो आज भी हमारे मंदिरों में लोग जा करके दुआ मांगते हैं और कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। जैसी भावना वो रख करके जाते हैं वो भावनाएं उनकी पूरी होती हैं। जड़ मंदिरों में भी कितनी शक्तिशाली आत्माएं संगम पर बनी होंगी आप सोच सकते हैं। आधार क्या होगा, किसके दर्शन होते हैं, जो इतने अंदर और बाहर से बहुत पवित्र और स्वच्छ हैं, जिसके अंदर जरा भी विचारों में अशुद्धि नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, हर आत्मा के प्रति बहुत रहम की, क्षमा की, दया की भावना रहती है, ऐसी आत्माएं दर्शनीय मूर्त बन जाती है। संगम पर हम अपनी दादियों को देखते हैं, उनकी एक सेकेंड की दृष्टि लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए कितनी चाहनाएं रखते हैं, कितना प्रयास करते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद कभी कभी उनके दर्शन हुए हैं। तो ऐसी चैतन्य दर्शनीय मूर्ति कैसे बने और हम कैसे बने, मूल बात है हम बन जाएं। तो 6-7 बातें ध्यान पर आती हैं कि अगर सचमुच कोई को इस स्थिति तक पहुंचना है, जो बोलना कम पड़े लेकिन सामने आए और उसको उसकी इच्छाएं, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, हमारे अच्छे वाइब्रेशन से, अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों के आधार से उन आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति हो, कोई को हिम्मत मिल जाए, कोई को शांति मिल जाए, कोई को शक्ति मिल जाए, किसी के अंदर उमंग उत्साह आ जाए, तब तो कहेंगे ये दर्शनीय मूर्त है। तो देखो अपने आप को, सचमुच ऐसे दर्शनीय मूर्त हैं जो कोई भी आत्मा सामने आते ही प्रसन्न हो जाए, उसकी जो मन इच्छित कामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन इसके लिए हम सबको अपने आप को संपन्न संपूर्ण स्थिति में रखना होगा। अगर हम ही अभी तक चाहिए चाहिए की चाहनाएं लेकर के बैठे हैं, तो बाबा कहता बच्चे तुम मेरे समान मास्टर दाता कब बनोगे। देने का समय है और फिर भी लेना है लेना है लेना है। इसलिए दर्शनीय मूर्त बनने के लिए हर खजाने से, अविनाशी खजाने से सदा संपन्न भरपूर रहना चाहिए। विनाशी खजाने तो आज हैं कल खुट भी सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति का, हमारी खुशी का आधार अविनाशी संपत्ति है। और वो अविनाशी संपत्ति जो बाबा ने अपने बच्चों को दी है वो अखुट है, अखंड है। इस समय हरेक बाबा के बच्चे के पास ज्ञान की अखुट संपत्ति है। सतयुग में कहते हैं सतयुगी स्वराज्य, सतयुगी राज्य सुख शांति संपत्ति से भरपूर होगा, अखंड होगा, कोई चीज की कमी नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। लेकिन संगम युग के देवी देवताएं, संगम युग पर वो बनने वाली आत्माएं इतनी हर खजाने से संपन्न बनी हैं, तो आप सबके पास ज्ञान का खजाना भरपूर है ना, है इतना भरपूर है। सिर्फ भाषण कर लिया, कोर्स करा दिया, किसी को प्रदर्शनी समझा दी, वो ज्ञान नहीं है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान माना, ज्ञान माना समझदार, ज्ञानी तू आत्मा माना समझदार, सोच समझ करके बोलना, सोच समझ करके करना, करने के बाद नहीं सोचना क्या कर लिया, नहीं करना चाहिए था, ये परवश स्थिति नहीं। ज्ञानी तो आत्मा माना अधिकारीपन की स्थिति, अधीनता नहीं। इसलिए बाबा ने हम सबको ज्ञान दे करके नॉलेजफुल बनाया, समझदार बनाया, और समझदार बच्चों को बाबा कहते हैं। बच्चे जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, सोचने बोलने करने के पहले भी सोचना कि राइट है या रॉन्ग है, करना है या नहीं करना है, ऐसे समझदार माना उनके पास ज्ञान की अथॉरिटी है, ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान को उन्होंने स्वरूप में लाया है। अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का ज्ञान सिर्फ ऐसे नहीं रटने के लिए मिला है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के किसी की देह पर ध्यान न जाए, आत्मा पर ध्यान जाए। ये आत्माएं पाठ बजा रही हैं, ये आत्माओं ने चोला धारण किया है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और हम सब आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं, एक घर से आए हैं। कोई भी हद की आकर्षण आत्मा को आकर्षित न करे, तब कहेंगे ये ज्ञानी तो आत्मा है। तो ज्ञान का खजाना कहाँ तक संपन्न है, गुणों का खजाना कहाँ है, समय पर जिस गुण की आवश्यकता है, क्या उस गुणों से मैं आत्मा संपन्न हूँ? सरलता, मधुरता, दिव्यता, पवित्रता, अलौकिकता, गंभीरता, रमणीकता, बहुत सारे गुण हैं जो संगम पर एक एक ब्राह्मणों के जीवन में दिखाई देने चाहिए। ऐसे नहीं हैं गुण हमारे पास, कई बार हम बहुत गंभीर बन जाते हैं तो लोग डरने लगते हैं, सीरियस हो गया ये। गंभीरता सीरियस का रूप न ले ले, गंभीरता अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा गुण है, लेकिन कई इतने गंभीर हो जाते हैं जो उनके सामने आने से लोग डरने लगते हैं, दर्शन क्या करेंगे। गंभीरता के साथ साथ हर्षित मुक्ता है, रमणीकता है, बैलेंस है। मम्मा बाबा का बैलेंस देखा है, दादियों का बैलेंस देखा है, ऐसे नहीं वो गंभीर नहीं थी, बहुत गंभीर थी, लेकिन अगर सामने कोई आ गए तो उनको मुस्करा करके दो शब्द कहना, बोलना, बहुत स्नेह की दृष्टि देना, उनको अपने हाथ से टोली खिलाना, तब तो इतना रिस्पेक्ट उनका बढ़ गया जो हर एक उनके सामने आना चाहता है, तब तो दर्शनीय मूर्त बने। आप लोगों ने परदादी को देखा है, पुराने पुराने देखा होगा, परदादी समझ रहे हैं ना, निर्मल शांता दादी। निर्मल शांता दादी जब मधुबन में लास्ट दिनों में रहती थी, इधर ही व्हील चेयर पर ही ले आते थे उनको बाहर, अगर वो बाहर आ जाती थी तो लोग उनको देखने के लिए ऐसे ऐसे भागते थे चारों तरफ, ऐसे घेर लेते थे आकर के, ऐसे लगता था जैसे वो बाबा ही है सामने। सकल भी वैसी थी, ब्रह्मा बाबा से मिलती जुलती, लेकिन उनके वाइब्रेशन ऐसे अच्छे थे, उनके अंदर की भावनाएं कितनी शुद्ध होंगी, शुभ होंगी, जो लोग ऐसे उचक उचक करके भीड़ में भी ऐसे देखना चाहते, एक सेकंड देखूं तो दादी क्या है, दर्शनीय मूर्त बन गई ना। ऐसी चैतन्य दर्शनीय मूर्त हम आत्माएं बन जाए, उसके लिए सात बातें सुनाता हूँ। इसी चेहरे से, इसी संबंध से, शरीर से, तो शरीर से दर्शन होगा, आत्मा का दर्शन कोई कर कैसे सकेगा, आत्मा तो सूक्ष्म है, निराकार है, हमें कोई देखेगा तो आत्मा तो अंदर है लेकिन दिखाई तो शरीर देगा। तो पहले मस्तक पर जितना हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, चमकती हुई मणि का अनुभव हो, ये आत्मा इस भ्रकुटी में चमक रही है, इस मस्तक से किरणें निकल रही हैं, जितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया होगा, जब दादी प्रकाश मणि से आप लोग मिलते होंगे, गुलजार दादी जी से मिलते होंगे, कई बार ये अनुभव किया होगा, जैसे उसका मस्तक चमक रहा है, इतना अभ्यास आत्मा का उन्होंने पक्का किया था, जो मस्तक से आत्मा जैसे झलक रही है, दिखाई दे रही है, इतना अभ्यास इस भ्रकुटी में रहने का किया, जो चमकती हुई मणि इस मस्तक के बीच में दिखाई दे रही है। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए पहले हम सबको अपनी आत्मिक स्वरूप को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना होगा, और बार बार यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस मस्तक के बीच, प्रकृति के बीच विराजमान एक चैतन्य ज्योति हूँ, बिंदु। दूसरा, अपने नैनों को देखो, क्योंकि नैनों से कहते हैं नजर से निहाल हो जाते हैं, किसी को नजर से ऐसे देख लो उसकी गम भूल जाए, उसके दुख दूर हो जाए। नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु, हमारे सतगुरु ने हम सबको इन्हीं नजरों से निहाल किया, अपना बनाया, जो बेहाल थे उनको निहाल कर दिया। तो जब हमारे नैनों में वो रूहानियत आ जाती है, किसी के रूप पर, किसी के रंग पर, किसी के सकल सूरत पर दृष्टि न जाए, इतनी अंदर से रूहानियत हो कि मैं आत्मा हूँ, ये आत्माएं हैं, ये आत्माएं। कहते हैं ना, नियत के अंदर रूह आ गई, अंदर से ही लगता है ये रूह देख रही है, रूह बोल रही है, रूह कर रही है, इसलिए कहते हैं रूहानियत आ गई। वैसे रूह के दो अर्थ होते हैं, एक रूह आत्मा को भी कहते हैं और एक रूह खुशबू को कहते हैं। तो वो जो खुशबू है, दिव्य गुणों की खुशबू है, वो नैनों से झलकती हुई दिखाई दे, वो रूहानियत है। और उस रूहानियत के आधार से आत्माएं बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, देखते ही ऐसे दृष्टि दे दो अंदर के दुख दूर हो जाते हैं, पास्ट की बातें भूल जाएं। बाबा ने जब हम सबको दृष्टि दी, नजर से नजर मिली, तो जो कोई प्रश्न थे, जो कोई बातें थे, कई बार सुना होगा ना, बाबा के सामने बहुत सारी बातें लेके गए, भाई कोई आए, बहुत प्रश्न थे, बाबा ने ऐसे दृष्टि दी, सब प्रश्न खत्म हो गए। इतनी शक्ति है नैनों में। दादियों के आगे कोई प्रश्न लेके जाओ, उनको बहुत स्नेह से ऐसे दृष्टि देंगी, पूछे कुछ पूछना है, दादी सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया, प्रसन्नचित हो गए। वो रूहानी दृष्टि, रूहानी नयन, रूहानियत से संपन्न, और बोल ऐसे हैं जो वरदानी हैं। सुनना चाहे लोग, चात्रक हूं कि मैं कुछ सुनूं इनसे, ऐसे नहीं, बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। कईयों की आदत होती है लौकिक जीवन में, अभी मैं जा रहा था बॉम्बे, ट्रेन से गया, रास्ते में तीन चार परिवार उसी कोच में बैठे थे जिस डिब्बे में मैं बैठा था, तो सेकंड एसी, वैसे कोई बोलते कम है, लेकिन वो तो क्या रात को 12 बजे तक इतना बोले, इतना बातें करें आपस में, क्या इनके अंदर है, दुनिया भर की बातें, कभी कोई बात छेड़े, कभी कोई बात छेड़े, तीन चार युवल बैठे थे, सारा टाइम बातें बातें, और बहुत जोर जोर से, आजू बाजू वालों की नींद फिट रही है, वो भी डिस्टर्ब सब हो रहे हैं, लेकिन वो बोलने का रस जो है, शायद कभी बोलते नहीं है, पता नहीं, वहाँ आकर के इतनी बातें कर रहे हैं जो लोगों को परेशानी हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं, रात को 12 बजे तक चल रही बातें। हम सब बाबा के बच्चे इस बात को समझें, ये बोल, ये वाणी बहुत बड़ी एनर्जी है, ये भगवान के काम आ जाए, इसलिए कहते हैं सत्य वचन महाराज, जो बोला जाए उतना सत्य हो जो उसकी जीवन बदल दे, ऐसा अपने बोल पर अटेंशन देना। इसलिए बाबा ने हम सबको एक मंत्र दिया, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, बाकी क्यों बोल रहे हो, इस पर बहुत ध्यान देना। कभी कभी हम लोग भट्टी कराने जाते हैं ना, भट्टी के अंदर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब भोजन पर गए तो ऐसे लगता है जैसे मार्केट में आ गए। लेकिन आप लोगों की रिजल्ट बहुत अच्छी है, मैं आपकी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मुझे बताया यहाँ पांडव भवन में आते ही कि माताएं बहुत साइलेंस में हैं, बहुत अच्छी भट्टी कर रही, बहुत अच्छी तरह से, ऐसे लगता है भट्टी करने ग्रुप आया है, नहीं तो बातें करते रहते, जहाँ बैठेंगे बातें कर रहे, बातें कर रहे। तो दर्शनीय मूर्त आत्माओं के बोल बड़े अनमोल होंगे, जो बोलेंगे वो सत्य सिद्ध हो जाएंगे, उतना ही बोलेंगे जितना बहुत जरूरी है, 10 बोल का काम 2 बोल में कर लेंगे। और जिस जो लोग सुनना चाहें कि भाई हमारे लिए कुछ तो बोल दो, जैसे हम बाबा के लिए क्या सोचते हैं, बाबा 2 शब्द तो बोले, दादियां 2 शब्द तो बोले, इतनी भावना बैठ जाती है, बोल सुनने के लालायित हो जाते हैं। तो दर्शनीय मूर्त आत्माओं के बोल बड़े अनमोल हैं, ध्यान देना, हमको बनना है ना चैतन्य में दर्शनी मुहूर्त, तो इसलिए बोल पर बहुत नियंत्रण, बहुत कंट्रोल, जो आया बोला, जब आया बोला नहीं, जब आया बोला तो उसमें कुछ न कुछ तो व्यर्थ मिक्स होगा ना। अधिक बोलने वाला कहे हम बिल्कुल सब कुछ ठीक बोल रहे हैं, कुछ तो कुछ मिक्स ही कर देगा अपना, इसलिए ध्यान देना कि हमें कभी भी ऐसे बोलने ही बोलने हैं जो किसी आत्मा के दिल को चोट लग जाए, घायल कर दे, या वो उलझ जाए, मूंझ जाए हमारे बोल से, प्रश्नों में आ जाए। चौथा है अपने चेहरे की, होठों की मुस्कुराहट। देवताओं को मुस्कुराते हुए दिखाए हैं, उनके चित्र भी ऐसे बनाए हैं, अगर कोई मुस्कुराना नहीं जाता, हम लोग क्या गीत गाते हैं, किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कराना सिखा दिया। और सचमुच कोई बाबा के बच्चों को देखता है ना तो कहते हैं ऐसी दुनिया में लोग ऐसे मुस्कराते कैसे हैं, हम हंसते नहीं हैं, ही करके हंसना नहीं है, जोर जोर से खिलखिला करके नहीं हंसना है। हमारे दादा थे ना यहाँ विश्वरतन दादा का बहुत ध्यान रहता था, और हमेशा अगर हम लोग जोर से हंस करके कहीं बात कर रहे हों, कभी धरा बुला लेते थे अपने पास, कहते देखो बाबा ने कहा है ना ये हंसी में भी विकारों की वायु होती है, इसलिए क्यों हंस के बात कर रहे हो, हंस के बात नहीं करो, मुस्कुरा करके बात करो। बहुत बड़ी ट्रेनिंग है ये, और बाबा ने अपने सब बच्चों को ट्रेनिंग दी है मुस्कुरा करके बात करो। मुस्कुरा तो वही सकता है जो बहुत पॉजिटिव है अंदर से, अगर अंदर कुछ भी किसी के प्रति नेगेटिव भरा हुआ है, किसी के भी प्रति आपके अंदर कुछ भी व्यर्थ भरा हुआ है, उल्टा सोच लिया है ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति के अंदर ये कमियां हैं, ये करता है, ये करता है, सामने आएगा तो मुस्कुराओगे उसके सामने, मुस्कुरा सकते हैं। तो मुस्कुराने के लिए तो हर आत्मा बहुत विशेष आत्मा है, बहुत महान आत्मा है, ये भगवान ने इसको चुन करके निकाला है, भले वो कैसा भी है। बाबा कहता है अगर 99% वो गलत है लेकिन 1% तो अच्छा है, कोई तो विशेषता है जो दिल से कह रहा मेरा बाबा। भगवान को पहचान लेना ये कोई कम विशेषता है क्या। बाबा की एक मुरली चली थी कि अगर 36 में से किसी के पास 35 अवगुण है, एक ही गुण है, तो बाबा उस एक गुण के आधार से उस आत्मा को सर्वगुण संपन्न बना देता। इतनी बड़ी नजर है भगवान की, कभी वो 35 अवगुणों पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक गुण को देख करके उसको सेवा में लगा दिया और कहा बच्चे यही एक गुण, यही एक विशेषता बीज है, और अगर एक बीज बो दिया गया तो उस बीज से जो फल निकल आएंगे वो आपको सर्वगुण संपन्न बना देंगे। इस ऊंची नजर से बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना की, उस विशेषता को देखा, उसको सेवा में लगा दिया। अब हम लोगों में क्या विशेषता थी, क्या लेके आए गांवड़े के गांव से, लेकिन बाबा के पास आए सिर्फ एक विशेषता रखी, वो भी विशेषता बाबा ने देखी कि बड़ों को कभी भी कट नहीं करना। हाँ जी, अगर उन्होंने कोई कार्य दिया है, चाहे कोई भी कैसा भी काम, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो कैसे करूँगा, मुझे आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है, तो दादियां कहती थी कोई जन्मजात से करके आता है क्या, करते करते सीखते हैं, जन्मते ही कोई राजा नहीं बन जाता है, जमते जाम नहीं बनता है, लेकिन सीख सीख करके, करते करते, अभ्यास करते करते सब कलाएं आ जाती हैं। तो आज जो बाबा ने यहाँ सब कुछ सिखा करके अपने समान बनाया, उसका कारण यही रहा कि कभी भी बड़ों की आज्ञा में ये नहीं कहा ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये मेरे से नहीं होगा, उन्होंने कहा है, उम्मीद रखी है, जी बाबा, जी दादी, हो जाएगा। आज मम्मा के मास में आप सब यहाँ आए हो, मम्मा नंबर 1 कैसे बनी, केवल बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, कभी ये क्वेश्चन ही नहीं आया कि कैसे करूंगी, कैसे हो सकता है, बाबा का मुख से निकलना शब्द बच्ची ये करेंगे, जी बाबा, हाँ जी बाबा, जी बाबा, हाँ, इसके सिवाय तीसरा शब्द यूज ही नहीं किया, हाँ जी किया, और कराने वाले बाबा ने करा लिया। अगर वो मैं कैसे कर सकती हूँ बाबा, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो मेरे से होगी नहीं, इसके विषय में मुझे पता ही नहीं है, इसके विषय में दूसरा कर ले। दूसरा कर तो लेगा, बाबा करा तो किसी से भी करता सकता है, बाबा का काम तो रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर मुझे चांस मिला है, मुझे कोई बात किसी ने कही है, उम्मीद रखी है, आशाएं रखी है और हमने हाजी कर लिया, तो पहला नंबर हम बन गए। इसलिए मम्मा ने जो पहला नंबर प्राप्त किया, श्री कृष्ण से भी पहले श्री राधे को याद किया जाता, श्री नारायण के पहले श्री लक्ष्मी को याद किया जाता, तो ऐसी मम्मा ने तीव्र पुरुषार्थ क्या किया, जो सोचा वो किया, जो संकल्प उठा वो बोल और कर्म में दिखाया, और जो कुछ बाबा ने कहा वही किया, दूसरा कुछ नहीं किया, नंबर वन बन गए। हम सभी भी देखें सचमुच बाबा का कहना और मेरा करना, तो हरेक की विशेषता देखने वाली आत्मा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रह सकती है। और अगर किसी की भी कमी कमजोरी कोई बातें देख लिया, कभी भी उसके सामने आप मुस्करा नहीं सकते, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, इन्होंने मेरे को इतने दिन पहले ये शब्द बोले थे, मेरे दिल को इन्होंने दुखाया था, अब वो दुख की सीन याद आ रही है, हमने उस बात को भूला नहीं पाया, जिसने अगर कहा होगा वो भूल गया, लेकिन उसने मेरे को कहा था, इसलिए वो बात अंदर हमने उसको गांठ बांध ली, अंदर चली गई, फिर वो जब सामने आता तो वही बातें बुद्धि में आती, मुस्कराएंगे कैसे। इसलिए ध्यान देना, कोई भी बीती को चिंतन नहीं करो, बीती भूतकाल है, अंडरलाइन करो, बीती भूतकाल है, और भूत को तो कोई भी याद करेगा तो भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। इसलिए जो कुछ बीत गया बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ था, कब हुआ था, भूल जाओ। अगर कोई को बाबा की स्मृति में रहना है, तो स्मृति स्वरूप बनना है, तो बीती को कभी भी चितो नहीं, बीती को याद नहीं करो, भूतकाल है, बीत गए, 5000 साल के लिए वो लिपट गए ड्रामा की रील के अंदर, अब लिपटी हुई बात को हम क्यों देखेंगे। तो ध्यान देना, चेहरे पर सदा प्रसन्नता के चिन्ह, आंतरिक खुशी के चिन्ह, आंतरिक सकारात्मक चिंतन के चिन्ह, उसका दर्पण तो चेहरा ही है ना। कोई कहे हम बहुत अच्छा अच्छा सोचते हैं, मेरे अंदर कोई नहीं आता, लेकिन उसके दर्पण से, उसके चेहरे से दिखाई तो दे सचमुच अच्छा सोचने वाला व्यक्ति है ये। तो दर्शनी मूर्त आत्माएं इन चार बातों पर तो ध्यान रखती ही है, लेकिन पांचवी बात है, इन हाथों से वही कर्म होंगे जो श्रीमत कहते। ये हाथ जिसके आधार से हम बाबा के राइट हैंड बने हैं, ये गलत काम नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम इन हाथों से न हो, श्रेष्ठ कर्म ही इन हाथों से करना। और साथ साथ बाबा कहते हैं, बच्चे दिल में दिलाराम के सिवा और कोई को स्थान नहीं देना। कई बार हम कई आत्माओं पर आकर्षित हो जाते हैं, कोई की विशेषताएं अच्छी लगती हैं, सहयोग दिया है, स्नेही है, समय पर साथ देता है, आत्मा अपना प्रभाव डाल के चला जाता है। अगर किसी भी आत्मा के प्रभाव में कोई आत्मा प्रभावित हो गई, तो दिल में उसको जैसे स्थान दे दिया, उस दिल में वो स्वच्छता नहीं है। इसलिए बाबा कहता है, अगर दिल में स्वच्छता नहीं है तो दिलाराम को आप अपने दिल के आसन पर बिठा नहीं सकते। याद होगा रमणीकता से गुलजार दादी जब क्लास कराती थी, तो ये बात बहुत अंडरलाइन करती थी कि हर एक अपने दिल में बाबा को बिठा लो। लेकिन आज कोई बड़े वीआईपी को भी किसी स्थान पर बुलाते हैं, तो उस स्थान की कितनी सफाई करते हैं, कितनी स्वच्छता करते हैं। अभी अभी मैं एक स्थान पर गया तो कहती, भाई जी आप हर साल आ जाए करो। मैं, क्यों? कि आप आए हैं तो सारे घर के लोगों ने मिलके पोछी कर दी, रंग कर दिया, सारा सफाई कर दी, इतना अच्छा देखो चमक रहा घर, 3 साल से लॉकडाउन में कोई ने कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही पड़ा था गंदा, आप आए हैं बस सबके अंदर आया, राजू भैया और सारे घर को चमका दिया इन्होंने, सब भाई बहने लग गए। आज एक कोई मधुबन से जाता है, कोई भी बड़ा वीआईपी कहीं आता है तो उसके पहले कितना ध्यान रखा जाता है, सब प्रकार की व्यवस्था ठीक हो, स्वच्छता हो, हर प्रकार से कहीं कोई चीज पड़ी ना हो, कोई गंदगी ना हो। अब हम भगवान को कहते हैं तुम आओ मेरे दिल आसन पर बैठ जाओ, उसको दिल आसन पर बिठाना है तो कितना स्वच्छ चाहिए, कितना पवित्र चाहिए। अगर ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, नफरत है, किसी के साथ वैर विरोध है, ऐसा दिल जिसका है उसके आसन पर बाबा कैसे आएगा, खुद विचार करना। तो बाबा इस दिल आसन पर बैठ जाए और जब कोई को मैं मिलूं और बाबा मेरे से दिखाई दे, वो बोलने लगे, बात करने लगे, कितना अटेंशन देना पड़ेगा। दर्शनी मूर्त हम अपना दर्शन क्या कराएंगे, हमको तो सबको अपनी सूरत से बाबा की सीरत दिखानी है, बाबा का दर्शन कराना है, उसको कहेंगे दर्शनी मूर्त। इस सूरत का क्या लोग दर्शन करेंगे, लेकिन बाबा का दर्शन कराएं तो तभी करा सकते हैं जब बाबा मेरे सदा दिल में निवास करें, उसका इतना प्यार, उसका इतना स्नेह, उसकी शक्तियां काम करें। तो हम सब ने बाबा को दिल में बिठाया है, दिलाराम दिल में रहता है, कहीं पर भी कोई के साथ दिल लगी न हो जाए ध्यान देना। दिलवाला को दिल दी है, कोई देहधारी पर प्रभावित नहीं होगा, कोई कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा चिंतन हो, कितना भी अच्छा उसके विचार चल रहे हो, प्लानिंग बुद्धि हो, सहयोगी हो, समझदार हो, मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। एक पर प्रभावित होने वाली आत्मा, एक बाबा, दूसरा न कोई। अगर इस बात को आपने पक्का कर लिया कि मुझे केवल एक पर प्रभावित होना, एक को ही सदा याद करना, एक की ही छत्र छाया में मुझे रहना है, एक बल एक भरोसा, कुछ भी आए, कोई भी पेपर आए, आते हैं और जब कोई पेपर आता है तो जिस प्रकार का वो सहयोगी होता है उसकी याद आ जाती। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे का तुमने उसको याद कर लिया तो मैं खिसक जाऊंगा, लेकिन उसको अगर सहयोगी बनाना है तो बाबा को पहले याद करो। बीज है बाबा, और बीज को पकड़ लिया तो वृक्ष तो आपका है ही है। बहुत गहरी बात है ये कि जिसने बीज को समझ लिया कि इस बीज के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और सच्चे दिल से उसको बाबा कहा, बाबा कहते ही जिसकी जरूरत होगी बाबा उसको हाजिर कर देगा। खुद तो निराकार है लेकिन साकार में कोई की जरूरत है तो हम क्यों उसको बुलाएं? वो डॉक्टर होता आ जाता, वो सहयोगी होता आता, वो होता तो मदद कर देता। बाबा बहुत ऐसे नहीं, भोलानाथ है, बहुत चतुर सुजान है। बच्चों के दिल में क्या है, कौन पहले याद आता है? पहले दिल में बाबा आए। कोई भी काम होता ना, बाबा आप बैठे हो ना, बाबा आप कराएंगे ना, फिर किसी से भी कराए, कोई भी आत्मा निमित्त बनाए, लेकिन वो कराएगा तो आत्माएं प्रभावित नहीं करेंगी हमें। इसलिए बाबा ने इस बार बहुत, कल की मुरली में, परसों जो संडे की मुरली सुनी है, बड़े सरल और कड़े शब्दों में एक बात कही है कि बाबा की देन को कई समझते हैं, मेरी विशेषता है। संगम युग पर एक एक बच्चे को प्रभु देन प्राप्त है, और उस प्रभु देन में अगर जरा भी मेरापन आ गया तो ये मैलापन है, ये महापाप है। ये शब्द है बाबा के, मेरी विशेषता है, मेरी योग्यता है, मेरी बुद्धि है, मेरा चिंतन है, मेरी प्लानिंग है, ये मेरा कहने वाला कौन? अगर ऐसे शब्द भी उच्चारण हो रहे हैं तो क्या होगा? मैलापन हो जाएगा, क्योंकि बाबा की दी हुई चीज में हमने अमानत में ख्यानत कर दी। इसलिए इस बात पर थोड़ा अटेंशन देना। कई बार हम मैं की भाषा जब प्रयोग करते हैं, बाबा कहता है मैं शब्द पॉजिटिव ही है, मैं आत्मा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, बोल रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, ये भी मैं है, लेकिन वो देही अभिमानी बनाने वाला है। और एक मैं है, मैं समझदार हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं योगी हूँ। कईयों को योगीपन का भी बड़ा नशा रहता है, मैं योगी हूं, मेरा बहुत अच्छा बाबा से कनेक्शन है, मेरी बहुत अच्छी सेवाएं हैं, मैं जिसको भी कोर्स कराते हूं वो बाबा का बच्चा बन जाता है। ये सूक्ष्म अभिमान होता है। और ऐसे सूक्ष्म अभिमान वाली आत्मा को अगर जरा भी कोई करेक्शन कर दे, जरा भी कोई इशारा भी दे दे, तो क्या होता है, इसने तो मेरा अपमान कर दिया, यहां तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। देखो इतने लोग हमारे से खुश हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हो गए हैं, बाबा के बन गए हैं, लेकिन इन्हें तो हमारी कदर ही नहीं है। ये क्या है, ये अभिमान का अपमान महसूस होता है। ये जो मैंपन है, बाबा कहता बच्चे इसकी बलि चढ़ा दो, इस मैं की बलि चढ़ाओ, तब बाबा आपको स्वीकार करेगा। दूसरी एक मैं है जो दिल शिकस्त बना देती है, मैं तो कोई काम की नहीं, मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मेरे को तो कोई जानते ही नहीं है, निराशा, उदासी, दिल शिकस्ती। बाबा कहता है इसके कारण बच्चों के उमंग उत्साह का जो ब्लड चलना चाहिए वो रुक जाता है। इसलिए ध्यान देना, दर्शनी मूर्त आत्माएं कभी भी ना दिल शिकस्त होना, निराश उदास होना जीवन में, और कभी भी अभिमान में नहीं आना, हमारे जैसा कोई नहीं है, बाबा ने दिया है, विशेषताएं दी हैं, हम यूज कर रहे हैं, दाता की देन है, बाबा ने जो दिया है हम दूसरों को दे रहे हैं, हमारे पास क्या है। कोई कहता मैं बड़ी अच्छी मनसा सेवा करता हूं, भाई मनसा सेवा करने के लिए तो मन इतना शक्तिशाली चाहिए, इतना पवित्र चाहिए, इतना शुद्ध चाहिए, जो मनसा के वाइब्रेशन ऐसे हों जो वृत्ति से वातावरण को चेंज कर दें। आज मधुबन का वातावरण क्यों सबको खींचता है, आप लोग ज्ञान सरोवर में भी आए हो, शांतिवन में भी आए हो, लेकिन पांडव भवन जैसा स्थान कहीं नहीं है। क्यों, क्यों नहीं ऐसा स्थान है, क्यों नहीं है मालूम बच्चों, तुमको मालूम, यहाँ ब्रह्मा बाबा की तपस्या है, यहाँ दादियों की तपस्या है, मम्मा की तपस्या है, उनकी वृत्तियों से वाइब्रेशन बना, और उस वृत्तियों के वाइब्रेशन से ये वायुमंडल चार्ज हो गया। इस वायुमंडल में कोई भी आ जाए, जानता है या नहीं जानता है, अज्ञानी आत्माएं भी आती हैं, उनको लगता है ये कोई अलग स्थान है, अलौकिक स्थान है, क्योंकि इस कण कण में बाबा ने अपने वाइब्रेशन भर दिए, तपस्या के, स्नेह के, शुभ भावनाओं के, तो शुभ भावनाओं से स्थान चार्ज है। इसलिए कोई भी कभी भी आएगा तो उसको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होने लगते हैं, अपनत्व की भावना आती है, स्नेह मिलता है, शक्ति मिलती है, शांति की अनुभूति होती है, अपनेपन की अनुभूति होती है, क्योंकि बाबा ने उसी तरह से बच्चों की पालना की इस स्थान पर रह करके। तो जहां पर हम सब रहते हैं, जिस स्थान पर पवित्र और योगी आत्माएं रहती हैं, उस स्थान का वातावरण अपनी वृत्तियों से चार्ज करना है, चुंबक बनाना। जितनी आपकी बहुत शुद्ध पवित्र वृत्तियां हैं, वृत्तियां कैसे बनती हो तो जानते हो, जितना हम शुभ संकल्पों में रमण करते हैं, कोई भी आज नेगेटिव संकल्प बार बार चले उसका वृत्ति बन गया, दृष्टिकोण ऐसा बन गया, कोई अच्छा संकल्प बार बार करते हैं, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं, भगवान की नजरों के अंदर हूं, तो जब पवित्र संकल्प बार बार उत्पन्न होते हैं तो वृत्तियां बहुत शुद्ध और शक्तिशाली बन जाती हैं। उन वृत्तियों से वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि काम करती है, और दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन, एक व्यक्ति के जीवन की सृष्टि बदल जाए, वो सृष्टि बाद में बदलेगी, लेकिन पहले मैं जिस आत्मा पर दृष्टि डाल रहा हूं, जिससे मिल रहा हूं, जिससे बात कर रहा हूं, हमारे वाइब्रेशन, हमारी दृष्टि, उसकी सृष्टि को बदल दे, माना उसके अंदर जो गंदी आदतें हैं, बुरे संकल्प हैं, विचार हैं, नेगेटिविटी है, वो सब समाप्त हो जाए। पहले एक व्यक्ति की सृष्टि परिवर्तन करे, फिर दुनिया की सृष्टि परिवर्तन करे, लेकिन उसका आधार है श्रेष्ठ चिंतन, और श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन करते करते हमारी वृत्तियां बहुत शुद्ध पवित्र बन गई, और शुद्ध पवित्र वृत्तियों के कारण वाइब्रेशन इतना अच्छा हुआ, वायुमंडल इतना अच्छा बना, जो आत्मा वहां आएगी वो बदल जाएगी, सृष्टि परिवर्तन होने लगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ध्यान देना कि अगर हमारे दिल में एक बाबा बसता है, कोई भी आत्मा चाहे अच्छाई से चाहे बुराई से मेरे ऊपर अपना प्रभाव न डाल दे, अच्छाई भी प्रभाव डालती है तो किसी की बुराई भी, कोई गलत होता है, कोई हमारा विरोध करता है, कोई हमें बद्दुआएं देता है, कोई भी हमारे प्रति नेगेटिव बोलता है, वो भी अपना प्रभाव डाल के जाता है। जब बैठोगे बाबा की याद में, उसकी बुद्धि जाएगी, फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया, ये ऐसे करते हो, ऐसे दोनों बातों का प्रभाव मुझ आत्मा पर प्रभाव न डाले, ध्यान देना, तब ये बुद्धि बड़ी स्वच्छ निर्मल बनेगी। और बाबा को बहुत प्यार से कहोगे बाबा, तो बाबा आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा दिल में, कंबाइंड हो जाएंगे। और सातवीं बात है, जहां कदम उठे, कहते कदम कदम में पदम समाए हुए हैं, ये कदम कहीं गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। हर कदम में बाबा की याद है, पद्मों की कमाई कदम कदम पर हम कर रहे हैं, इसलिए संगम पर जो कदम उठ रहे हैं, किधर चल रहे हैं, जिधर बाबा चले उधर मेरे कदम चले, जो कदम उन्होंने उठाए हैं, जो श्रेष्ठ कर्म रूपी कदम बाबा ने उठाए हैं, हम सब उन्हीं कदमों पर कदम रख करके आगे बढ़ें। कोई नया रास्ता किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई कितना भी कहे कि नहीं ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन बाबा ब्रह्मा ने जो कुछ किया है, जो कदम उन्होंने उठाए हैं, साकार में उठाए, अव्यक्त होने के बाद उसका वर्णन किया है कि ब्रह्मा ने ऐसे किया, ब्रह्मा ने ऐसे किया। जब भी जनवरी मास आता है, मेरा एक ध्यान रहता है कि हर ब्राह्मण आत्मा को कम से कम 10, 20, 18 कदम भेजूं कि ब्रह्मा ने क्या किया। अब ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके मुझे चलना है, इसलिए नया रास्ता नहीं है, मेहनत वाला रास्ता नहीं है, सब कुछ करके सिखाया है। आज बहुत अच्छी बात मैं पढ़ रहा था, टाक्सो में आ रही थी, कई बाबा के बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाबा के पास, साथ तो शिव बाबा थे, कोई भी परीक्षा आई, बीमारी आई, कोई भी आया, शिव बाबा उनके साथ थे, मदद कर देते थे। इसलिए कभी कभी कहते हैं ब्रह्मा बाबा तो उसमें तो भगवान थे, तो बाबा ने कहा चलो अच्छा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी छोड़ दो, तुम्हारे सामने दादी थी, दादी प्रकाश मणि को तो देखा है, कितनी न्यारी, कितनी प्यारी, कितनी हल्की, कितनी हर प्रकार के बोझ से मुक्त, इनको तो फॉलो कर सकते हो, इनके साथ तो बाबा शिव बाबा नहीं प्रवेश है। बीमारी में भी कभी भी ये नहीं कहा मुझे दर्द है, मुझे कोई भोगना है, मेरे कोई तकलीफ हो रही, कभी भी चले जाओ। हम तो कई बार जाते थे बीमारी के समय, अकेले पहुंच जाते थे, बड़े मुस्कुराते हुए ऐसे कहती थी, मैं तो आप सब बाबा की दुआओं के नीचे हूं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, शरीर बिस्तर पर है, ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन चेहरे पर वही मधुरता, स्नेह, बाबा की याद, कभी भी दुख दर्द की अनुभूति नहीं हुई उनके चेहरे से। भोगना के रूप में उन्होंने कर्म के हिसाब चुक तो नहीं किए, बाबा की याद मस्ती में, तो साकार में रह करके जो बाबा आज मुरलियां चला रहे हैं, बच्चे शरीर का हिसाब किताब आता है, कर्जा उतर रहा है, कोई बात नहीं है, हल्के हो गए, बोझ उतर गया, चिंता नहीं करो, तो दादियों ने ऐसी स्थिति बनाई ना, प्रैक्टिकल सबके आगे शरीर के हिसाब किताब है, लेकिन कैसे उन्होंने उसमें अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाया, बहुत धैर्यता के साथ सब कुछ सहन करते हुए अपने चेहरे पर उस बात को आने नहीं दिया, वो तो हम सब दादियों को देख चुके हैं, तो इनको तो हम फॉलो कर सकते हैं। बाबा तो हमेशा यही कहता, ब्रह्मा को बाबा को फॉलो करो, देहधारी को नहीं फॉलो करो, लेकिन उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि आज जिन्होंने बाबा को फॉलो किया साकार में, कम से कम उनके समान तो हम बन जाएं, तो उनके कदम जो उठे, दादियों ने जो कदम उठाए, वो श्रीमत ही कदम है, कोई दूसरा कदम नहीं है। श्रीमत क्या कहती है, श्रीमत के विपरीत एक भी कर्म मुझे नहीं करना है, कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी लोग अपसेट हों, विरोध करें, लेकिन श्रीमत सिरमाथे, समझ रहे हैं मेरी बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ये अंडरलाइन करना। कई बार हम कहते हैं फलाना नाराज हो रहा है, असंतुष्ट हो रहा है, मुझे तो क्या करना है, श्रीमत में हम मनमत मिक्स कर देते हैं। और जब श्रीमत में मनमत मिक्स होती है तो कई मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है, इसलिए कुछ भी सहन करना पड़े, झुकना पड़े, मरना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन कहीं मर्यादाएं न टूट जाएं, श्रीमत पर ही मेरे कदम उठें, उसमें हमें दृढ़ रहना है। तो ऐसे अगर इन बातों पर हमारा ध्यान रहेगा और सदा ये रहे कि जो आत्मा मेरे संबंध संपर्क में आए उससे मुझे दुआ देनी है, दुआ देना माना संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है, खुश करना है, संतुष्टता, खुशी का सहयोग, दान अगर हम सबको दे रहे हैं तो जैसे उसको हम दुआएं दे रहे हैं। कोई भी आत्मा की अगर कमी, कमजोरी, संस्कार देखा, दिखाई दिया, किसी ने सुना दिया, एक कान में चली गई, तो बाबा कहता अगर अंदर ले लिया तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो उधर से ही निकाल दो, और अगर अंदर आ गई है तो दूसरा कान भी ऐसे निकाल दो, उसका चिंतन करके डिस्टर्ब नहीं हो, ऐसा करते ऐसे होता, ऐसे होता है। कई बार सुनी सुनाई बातें व्यक्ति के माथे को बहुत गर्म कर देती, सुनी सुनाई बातें, उसने सुनाया, उसने कहा बाबा आपके लिए ऐसे कह रहे थे, फलानी दीदी आपके लिए ऐसे कह रही थी, किसी को डिस्टर्ब करना हो ना, बाबा कई बार इसको क्या शब्द देते मालूम है, धूतीपना, इधर की उधर, इधर की उधर, ऐसा धूतीपना नहीं, हम सब ध्यान दें। अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पसंद है तो अंदर चिंतन में नहीं रखो, नॉलेजफुल बनो लेकिन अंदर समा नहीं लेना, समा गई तो फिर वो स्वरूप में आ जाएगी। इसलिए कभी भी कोई बात अच्छी नहीं है, हम समझते हैं अच्छी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, उसको हम अंदर न लें, नॉलेजफुल बन करके अपनी सेफ्टी फर्स्ट, अपना किनारा करो भले, लेकिन उसके चिंतन में चल करके उसके पर दृष्टिकोण बदल लेना। जिस आत्मा ने कोई गलती की है, कोई भूल की है, हमारी निंदा की है, हो सकता है कोई कारण से किसी को सहयोग दे दिया हो, निंदा कर ली हो, और उसके बाद वो बात भूल गया हो, लेकिन हमारे कान में आए कि फलाना व्यक्ति आपके लिए ऐसे ऐसे कह रहा था, ऐसे बोल रहा था, और हमने उसके प्रति अपना व्यवहार बदल लिया, दृष्टि बदल गई, जैसे उन बद्दुआओं को मैंने अपने पास ग्रहण कर लिया। बाबा का बहुत अच्छा इसमें शब्द है, बच्चे अगर मान लो आपको कोई गलत ऐसी चीज देता है, मान लो आज कोई आम दे रहे हैं, कोई दे रहा है आपको, वो सड़ा हुआ अंदर से कुछ भी है, आपने ले लिया, ऐसे तो नहीं वो खा लेंगे, ठीक नहीं है, उसने दे दिया, आपने ले लिया, आप जा करके डस्टबिन में डाल देंगे, खा लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कह रहा है, दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, निंदा कर रहा है, उल्टी सीधी बात बोल रहा है, हमारे काम की नहीं है, तो क्यों अंदर जाए, ले लिया है, आ गई अंदर, डाल दो बाबा की, बाबा के पास समर्पित करो, बाबा ये ले लो। अब ये बहुत ऊंची स्थिति बनाने की बात है, लेकिन दर्शनीय मुहूर्त बनने के लिए स्थिति तो बहुत अच्छी चाहिए, ऐसे दर्शन किसका करेंगे लोग। तो हम सब बाबा के बच्चों को इस समय बहुत ध्यान देना है कि मुझे अपनी आंतरिक संपूर्ण पवित्रता के आधार से दर्शनीय मुहूर्त बनना है, दृष्टि दो उसको, ऐसे बहुत प्यार से, स्नेह से देखो, बोलो, बात करो, अच्छे वाइब्रेशन से कहीं जाओ तो उस वाइब्रेशन से उनको महसूस हो कि ये हमारे पास आए थे, बहुत शांति थी, बहुत शक्ति थी उनके चलने में, बोलने में, देखने में, उनसे अपनेपन की अनुभूति हो रही थी, ये क्या है, दर्शनी मुहूर्त बन गई। आप अभी ऐसी स्थिति बनानी है, हम सबको इतना अटेंशन देना है कि जितना हम बहुत पवित्र शुद्ध विचारों में रहते हैं, जितना हमारा चिंतन हर आत्मा के प्रति बहुत शुभ है, कल्याण का है, जितना हमारी वृत्तियों में निर्दोष भावना है, कोई भी आत्मा अगर गलत कर रही है तो ये भावना ही परवश विचार, बाबा ने जैसे हम लोगों को परवश समझ करके हमारे वर्तमान कमी कमजोरियों को नहीं देखा, इसी बच्चे को तो मैंने बनाया था, ये वर्तमान समय कोई युद्ध कर रहा है, लेकिन बनेगा तो यही, इस भावना से बाबा ने देख करके हर एक बच्चे की विशेषता का वर्णन किया। कई बार हम सब एकदर्शी बनते हैं, त्रिकालदर्शी नहीं बनते, और एकदर्शी माना वर्तमान को देखने के कारण, वर्तमान पर हमारा ध्यान जाने के कारण उसकी हर बात कमियों की नोट होती है। लेकिन वर्तमान समय कोई कर्मिंद्री के, कोई संस्कार के, कोई व्यक्ति के अधीन होकर के, परवश होकर के वो ऐसा कर रही है। लेकिन ये है तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, विजयी आत्मा। अब ये दृष्टिकोण हमारा बन जाए तो सदा काल के लिए उसके प्रति हमारी वृत्तियां नेगेटिव नहीं बनेंगी। अगर उस आत्मा की विशेषताओं पर बार बार ध्यान जाता है, कम से कम इतनी करोड़ों आत्माओं में से यही भगवान के क्यों बने, इन पर ही नजर क्यों कही, इन्होंने कैसे बाबा को पहचान लिया, कुछ तो श्रेष्ठ कर्म किए हैं। कोई कोई कहते हैं ये तो यज्ञ में इतना लुटा रहे हैं, इतना नुकसान कर रहे हैं, इनको कोई देखता नहीं, ध्यान नहीं देता। मेरे पास आते हैं, मुस्कुरा के कहता हूं भाई जरूर भक्ति में उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, क्यों अपनी स्थिति खराब कर रहे हो। भगवान के नाम पर उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, भगवान का खा रहे हैं, लुटा रहे हैं, लूटने दो, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो, क्यों स्थिति बिगाड़ रहे हो, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। आप अपनी सच्ची दिल रखो, सच्ची भावनाएं रखो, सच्ची भावना से जो करो उसमें क्वेश्चन करो ही नहीं कहां गया, कैसे गया, जो सफल हो, बाबा के घर में गया, सफल हो गया। इसको देंगे तो ये हो जाएगा, उसको देंगे, तुम क्यों अपनी बुद्धि चला रहे, तुम बाबा को देख करके दे रहे हो ना, बाबा को दिया, बाबा जाने, बाबा का आपके हिसाब किताब को जाने। बहुत अंदर से निश्चिंत भावना से, निश्चित स्थिति से, शुभ भावना से जो सफल करना कर लो, देखा देखी करने की जरूरत नहीं है। स्थिति को अच्छी बनाने के लिए बड़े अच्छे चिंतन चाहिए, बहुत अच्छा ज्ञान चाहिए। ड्रामा का ज्ञान इतना एक्यूरेट है, बाबा कहता है बच्चे जो सच्ची कमाई है, सच्चे दिल वाले बाबा के बच्चे हैं, उन सच्ची कमाई का ब्राह्मणों के पेट में जाएगा, और जो इधर उधर की कमाई आई है वो जा रही इधर उधर। इसलिए हम क्यों संकल्प चलाएं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ। कई लोग अपने को बच्चे बनते हैं। बाबा ने बड़ा रमणीकता से परसों एक बात बोली, नए बच्चों को कहा ये पुराने चलते चलते ना जरा मेरे मेरे में आ जाते हैं, तुम मेरे मेरे में नहीं आना। अधिकार समझने लगते ना, मेरा भी अधिकार है, मैं भी तो कुछ करता हूं, मेरी बात भी सुननी चाहिए। जितना पुराने हो जाते उतना मेरा अपन बढ़ जाता। लेकिन बाबा ने नए बच्चों को क्या कहा, तुम सिर्फ एक बाबा को देखो, बाबा शब्द बोलो, बाबा में सारा ज्ञान है, वो बीज है, उसको पकड़ लिया तो सब मिल जाएगा। तो बाबा की ऐसी मुरलियां जब चलती हैं तो चिंतन तो करते होंगे ना, कैसे सुन लिया। बहुत गहरी बातें बाबा की अव्यक्त मुरलियों में कभी कभी आती हैं। श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम सबको बाबा की ऐसी ऐसी पॉइंट्स सदा चिंतन में रहनी चाहिए, और उस चिंतन के आधार से श्रेष्ठ स्थिति अपने आप बन जाती है। और जब उस स्वरूप में हम स्थित रहते हैं तो दर्शनीय मूर्त, कोई भी देखेगा, सामने आएगा, दृष्टि लेगा, उसको दर्शन हो जाए, बाबा का दर्शन हो जाए, इसका क्या दर्शन होगा। तो हम सब बाबा के बच्चे वर्तमान समय अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज से है, सारी पवित्रता की स्टेज। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये सब अपवित्रता की जो भी है बातें, छोटी मोटी ईर्ष्या की, नफरत की, वैर भावना की, एक दूसरे की ग्लानी करने की, बद्दुआ देने की, सब क्या है, नेगेटिविटी है ना। लेकिन जब आत्मा संपूर्ण पावन बन जाएगी तो दर्शनीय मूर्त बन जाएगी। और संपूर्ण पावन माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्माचारी स्थिति है। जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया वो मुझे करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा रहे हैं, जैसे उन्होंने सबकी पालना की है, जैसे उन्होंने कर्म रूपी कदम उठाए हैं, एक बाबा के सिवाय किसी पर भी आंख नहीं गई। हम सबको ब्रह्मा बाबा के समान ब्रह्माचारी बनना है, और ब्रह्माचारी आत्मा ही बाबा के समान दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, तो हम सब दर्शनीय मूर्त बन सकते हैं कि नहीं बनेंगे, एक एक को बनना है। और बाबा ने कहा है कि जब इतने मेरे बच्चे दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे तो बाबा अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रत्यक्ष कहने की और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमारे चलन से, हमारे चेहरे से, हमारी दृष्टि से लोगों को ये लगेगा, ये कलयुग में ऐसे रह सकते हैं क्या? इतने निश्चिंत हैं, इतने खुशी में रहते हैं, ये तो अलग प्रकार की दुनिया से कहीं से आए हैं। अभी मैं कल बड़ौदा में था, एक बहुत बड़ा VIP आया था, देख करके कहता है योग में ही आ गया, अचानक ले आई बहने, तो बैठा 5-7 मिनट योग में करा रहा था, चल रहे थे, तो अनुभव सुनाने आया स्टेज पर, कहता है इतने चमकदार चेहरे तो मैंने कभी देखे नहीं, कितनी चमक है, कितनी ऊर्जा है इस स्थान पर। कुछ नहीं बोला, कोई ज्ञान नहीं दिया गया उस आत्मा को, लेकिन वो देख करके इतने प्यार से बोलता है यहां ऊर्जा निकल रही है इस स्थान से, और इसी स्थान से लोगों को शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, अच्छे वाइब्रेशन यहां से निकल रहे हैं और आप सबके चेहरे चमक रहे हैं। जब बाबा की याद में बैठते हैं तो चेहरा तो चमकेगा ना, तो चेहरे पर रूहानियत की चमक है, पवित्रता की चमक है, प्राप्तियों की चमक है, आंतरिक खुशी की चमक है। वो चमक हर एक को अनुभव होनी चाहिए जो दुनिया में लोगों के पास नहीं है। कितने चिंतित हैं, क्या होगा कल, क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाबा कहता तुम बच्चे उन बातों की परवाह नहीं करो, ये सब परिवर्तन की सीन है, अंतिम सीन है, ये सब अति में जाएगी और अति में जाके अंत हो जाएगी। तुम क्यों उन प्रश्नों में अपना समय, अपने संकल्प, अपनी शक्तियां गंवा रहे हो? बहुत निश्चिंत रहो, बाबा तुम्हारे साथ है, बाबा को साथी बनाओ और जो कुछ आती है बातें बाबा को अर्पित करो। बाबा आप बैठे हो, अब बड़े घर में बैठे हो तो छोटों को चिंता करने की क्या जरूरत है? बैठे हैं बाबा, बैठा है अभी बाबा, गया थोड़ी कहीं। तो बहुत सच्चे दिल से बाबा को, बाबा ये सब आपका है, आप जानो, मैं बच्चा हूं, मैं निश्चिंत रहो। भाई लोग ज्यादा जवाबदारी तो नहीं लेते हो ना, कभी टेंशन नहीं लेना, कुछ भी हो जाए बाबा बैठा है। दादी कहती थी मुझे कभी टेंशन नहीं होता, टेंशन उनको होता है जिनको टेंशन है। टेंशन तो नहीं होता ना भाई लोग, होता है। अब टेंशन तो हम लोगों को ही नहीं, बाबा को सन बना लो, बाकी टेंशन नहीं बनाना। जिसने बाबा को अपना सन, अपना बच्चा बनाया है, वो टेंशन फ्री हो गया। बाबा बैठा है, बाबा जवाबदार है, सब कुछ कर लेगा, ठीक हो जाएगा। अटेंशन का भी टेंशन नहीं लेना, कहीं अटेंशन का टेंशन ले लेते, आज 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, योग करना है, रात को सोचते सोचते नींद नहीं आती, कब 3 बज गया पता ही नहीं चलता, ये भी तो टेंशन हो गया ना। कोई टेंशन नहीं, बाबा अपने आप उठाएगा, बाबा की गोदी में चले जाओ, समय आएगा बाबा उठा देगा, घंटी बजा देगा। ठीक है, तो हम सब कोई संगम पर बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, बाबा सब कुछ ठीक कर लेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी है, सच्चाई अंदर से, अंदर बाहर की सच्चाई है, तो बाबा आपके सब जो बोझ, सब जवाबदारियां ले ले। लेकिन सच्चाई नहीं है, कहीं कहीं मिक्स किया हुआ है, तो बाबा किनारा कर लेता है। ठीक है, तो चलो अभी हम आधा घंटे बाबा की याद में खो जाएं, समा जाएं। पहले बाबा को अपने दिल आसन पर बुलाना, देखें किसके पास आता है बाबा। जो उठ रहे हैं केवल 5 मिनट की छुट्टी है, फ्रेश होकर के बैठ जाएं, तब तक गीत बजा दो, फिर लक्ष्य देते हैं। Thank you.
Thank you.
सभी अपने भ्रकुटी आसन पर मस्तक के बीच चमकती हुई मणि का अनुभव करो। मैं बहुत शुद्ध पवित्र चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। बहुत स्नेह से अपने दिव्य नेत्र से बाबा को देखती, उस निराकार शिव बाबा का आवाहन करो। अपने इस भ्रकुटी पर, इस दिल तख्त पर बाबा का आवाहन करते, उस पतित पावन सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ बाबा के साथ कंबाइंड होकर उनकी शक्तियों का अनुभव करो। शांति का सागर, प्यार का सागर, पवित्रता का सागर मेरे साथ कंबाइंड है। मैं उनके संग के रंग में उनके समान सर्व गुणों में संपन्न बन रहा हूं। संपन्न स्थिति का अनुभव करो। सर्वशक्तियों की लाइट से संपन्न, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मेरे चारों ओर बहुत सुंदर प्रकाशमय लाइट का शरीर, मैं उस लाइट के साइड से अपने लाइट के वतन में बाप दादा के सन्मुख विराजमान हूँ। बाबा की दृष्टि का उनकी रूहानी नजर का उनके पवित्र शुद्ध शक्तिशाली वाइब्रेशन का उनके वरदानी हाथ का अनुभव करो। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा प्रकृति सहित सर्वात्माओं को शक्तियों की सकाश दो, चारों ओर पवित्रता के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं फरिश्ता विश्व कल्याण की सेवा पर उपस्थित हूँ। मैं एक लाइट हूँ। चमकता हुआ सितारा फरिश्ते स्वरूप से उड़ते सर्वात्माओं को शक्तियों की सकाश दे रहा हूं। सभी अपने पूज्य स्वरूप में स्थित होकर मैं सर्वात्माओं की इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। हरेक को नजर से निहाल करने की सेवा करो। अनेक भक्त आत्माएं अपने इष्ट का दर्शन करके प्रसन्न हो रही है। हरेक की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। सभी अपने दाता स्वरूप में स्थित होकर सर्व भक्तों को मन इच्छित फल दे दो। मंदिर में विराजमान मैं एक चैतन्य मूर्ति हूँ। जिस मूर्ति का गायन स्वयं भगवान करते हैं, मैं उनकी प्रिय मूर्ति इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान अनेक आत्माओं को दिव्य दर्शन कराकर उन्हें प्रसन्न कर रही हूँ। मैं दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ।